यह प्रवचन भौतिकवादी और आध्यात्मिकवादी में अंतर पर आधारित है, जो कि 3 फरवरी 1996 में श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा मुंबई में दिया गया।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानं मिलं दास्यां ज्ञानं जनाशलाक्या चक्षुरं मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकरामयं ददाति स्वापदं पीठं। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपां सगरजतां सहगना रघुनाथन्वितं तं सुजीवं सद्वैतं सुभूतं परिजना साहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। सप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानु सूत देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हमारे संप्रदाय में एक बड़े महान आचार्य थे जिनका नाम है ठाकुर भक्ति विनोद। हमने कई बार उनके विषय में चर्चा की है। ठाकुर भक्ति विनोद जी बहुत ही अच्छे उदाहरण थे। वो गृहस्थ आश्रम में थे और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए उन्होंने भगवान की भक्ति में भी कोई छूट नहीं छोड़ी। तो ठाकुर भक्ति विनोद जी ने कहा कि जिस प्रकार कोने कोने में बीड़ी सिगरेट शराब की दुकान प्राप्त होती है, उसी प्रकार कोने कोने में ऐसा स्थान होना चाहिए जहां के लोगों को हरि नाम की प्राप्ति हो सके। उन्होंने कहा नामह, कोने कोने में एक दुकान होनी चाहिए जहां की ये हरि नाम का वितरण हो मुफ्त में। तो कोने कोने में तो हम मंदिर नहीं खोल सकते, ना उतनी योग्यता है, ना धन है, ना इतने भक्त हैं। पर कोने कोने में आप गृहस्थ लोगों का घर है और आप सबके घर को आपको एक हरि नाम की दुकान बना देनी। आपको अपने घर का उपयोग करना चाहिए या हरि नाम का वितरण करने के लिए। हमारे परम गुरुजी भक्ति सिद्धांत सारस्वती ठाकुर सुनाते थे कि अगर इस विश्व में किसी चीज की कमी है तो केवल ये भगवान के ज्ञान की कमी है। जैसे विदेशों में लोग कहते हैं भारत गरीब देश है, हाँ तो ये है ये देश की सबसे बड़ी समस्या। पर चाहे भौतिक दृष्टि से गरीब हो अमीर हो, पर ये भगवान के ज्ञान की कमी जरूर है। एक महान संत गोविंद दास जी, उन्होंने एक बड़ी सुंदर रचना लिखी है जिसका नाम बाजा हुड़े माना। तो इस रचना में वो कहते हैं, बाजा हुड़े माना श्री नंद नंदना अभय चरणा रविंद। वो कहते हैं, हे मेरे प्रिय मन, तुम किसी न किसी रूप से अभय चरणा रविंद। अभय मतलब वो स्थिति जिसमें कोई चिंता नहीं हो, जो हम चिंता से रहित हो जाएं। अगर आज आप ध्यान से देखो, कौन है चिंता से रहित? गरीब व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे तो परिश्रम करना पड़ता है रोटी कमाने के लिए, पर वो कोठियों में सेठ लोगों की कोई चिंता नहीं है। अगर आप सेठ लोगों के पास जाओ तो उनको भी अपनी चिंता रहती है। तीन दिन पहले हमें एक बहुत बड़ा व्यापारी भारत का मिलने आया था दिल्ली में, तो उसके साथ एक दो मशीन गन वाले आदमी थे। तो वो कह रहा था, मुझे ऐसे ही एक फ्रंट ने मुझे मेरे बच्चे को धमकी दे दी, मुझे धमकी दे दी। तो वो बेचारा जहां जाता है दो आदमी साथ लेकर जाता है। फिर प्रधानमंत्री है, जब उसकी गाड़ी गुजरती है दिल्ली में किसी सड़क से, पूरी सड़क को बंद कर देते हैं, पूरी सड़क। क्यों? भय है कोई कुछ कर नहीं दे, ठीक है ना? पर क्योंकि वो धनी व्यक्ति हैं, तो उनके साथ बहुत सिपाही हैं। प्रधानमंत्री का एक बेटा है डॉक्टर रंगा राव, उसका हमारी संस्था से बहुत अच्छा निकट का संबंध है, तो हमारे कई प्रोग्राम्स में आता है दिल्ली वृंदावन हैदराबाद में। तो जब वो आता है, क्योंकि प्रधानमंत्री का बेटा है, तो साथ में 20-25 वो ब्लैक कैट भी आते हैं। तो हमारे वृंदावन में आया था पिछले साल जन्माष्टमी के लिए भगवत सप्ताह में, तो 20-25 ब्लैक कैट भी आए थे सब जगह। तो हर एक के मन में भय है, एक व्यापारी के मन में भय है दूसरा व्यापारी हमारा धंधा नहीं छीन ले, एक व्यक्ति के भय में है कि दूसरा व्यक्ति हमारी नौकरी नहीं ले रहे, है ना? तो जब तक हम भगवान से स्वतंत्र प्रयास करते हैं जीवन को निभाने के लिए, सदा भय रहेगा। आप बेशक बिरला के घर चले जाओ, टाटा के चले जाओ, किसी के चले जाओ, बाहर से सब हंसते हैं पर अंदर सबके मन में भय रहता है। ये शास्त्रों का निर्णय है, तो इससे ये सत्य अवश्य ही है। तो गोविंद दास जी कहते हैं, हे, और ये भय आता कहां से है? भय तो सारा मन में ही बनता है, ठीक है ना? जैसे प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, सुख दुख, हम अपने आप को सुखी कब से मानते हैं? हम अपने आप को सुखी मानते हैं जब धंधा अच्छा चले, आमदन आए, ठीक है? तो प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, ये सुख और दुख जो है, ये तो केवल एक मन की कल्पना है। आपको कोई आदर दे, कहे आप कितने अच्छे हो, हार चढ़ाए, ताड़ी मारे, तो मन कहता है, देखो सब तुम्हारी कदर करते हैं। और अगर आपको जो आदर चाहिए नहीं मिले, तो आपका मन ही आपको दुखी बना लेता है ना? तो ये मन ही आपको आज सुखी बनाता है, कल दुखी बनाता है। आपका स्वरूप तो वैसे का वैसे ही रहता है। तो गोविंद दास जी कह रहे हैं कि हे प्रिय मन, तो अभय चरण रविंद है। हमारे गुरु महाराज जी का नाम, उनके पिता, हमारे गुरु जी के पिताजी जो थे, उनका नाम था गौर मोहन भी। तो शुरू से बड़े धार्मिक विचार के थे। उन्होंने अपने बेटे का नाम क्या रखा? अभय चरण रविंद। अभय, अभय का अर्थ है जो भय से रहित हो। भय से रहित कौन हो सकता है? करोड़पति व्यक्ति, देश का राजनेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नहीं। भय से रहित केवल वो व्यक्ति हो सकता है जो किसी न किसी रूप से परम भगवान के शरणागत हो जाए। क्यों? क्योंकि जब आप भगवान के शरणागत हो जाओगे, तो आप ये समझोगे कि आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। आप अगर सोचते हो कि आपके हाथ में कुछ है, तो ये बहुत बड़ी भूल है। भौतिकवादी और आध्यात्मिकवादी में क्या अंतर? मुख्य अंतर यह है कि भौतिकवादी व्यक्ति ये सोचता है वो है हर चीज का भोक्ता, वो है हर चीज का स्वामी, और जो सफलता प्राप्त हो रही है उसकी बुद्धि और परिश्रम के द्वारा प्राप्त हो रही है। आध्यात्मिकवादी ये सोचता है कि परम भगवान है हर चीज के स्वामी और भोक्ता, और हम तो केवल एक निमित्त मात्रम है, और भगवान की इच्छा के बिना एक घास का पत्ता भी नहीं हिल सकता, और क्योंकि वो है हर संपत्ति पृथ्वी के स्वामी, हर चीज का उपयोग होना चाहिए उनकी सेवा। तो इसलिए ये कहा गया है गोविंद दास जी के द्वारा कि अगर आप किसी न किसी रूप से अभय चरणा, मैं कह रहा था गोरमोहन डे जो हमारे गुरुजी के पिताजी थे उन्होंने उनके बेटे का नाम रखा अभय, और रघुपा जी कभी नहीं डरे। आप लोगों ने उनके जीवन के विषय में पढ़ा होगा किस प्रकार उन्होंने संघर्ष किया लगभग 25 साल के लिए। यहाँ विले पार्ले में रहते थे प्रभुपा जी कई समय के, बहुत समय के लिए यहाँ विले पार्ले अंधेरी में ठहरे थे। एक सिंधिया नेविगेशन कंपनी का कोई व्यक्ति था उसके घर में एक छोटे से कमरे में। आप अगर हमारे मंदिर में प्रभुपा जी के क्वार्टर में जाओ पांचवें फ्लोर में, वहाँ एक कुर्सी पड़ी है जो हमें अंधेरी से मिली जिसमें प्रभुपाद बैठते थे, पुरानी कुर्सी एक है। पर प्रभुपा जी घबराए नहीं, अमेरिका भी गए घबराए नहीं, उनके मन में पूरा विश्वास था क्या कि चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी सत्य जरूर बनेगी। क्या थी चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी? पृथ्वी ते आचे जता नगर आदि ग्राम, जितने विश्व में नगर हैं गांव हैं वहां मेरे नाम का प्रचार जरूर होगा। और उनके गुरु महाराज जी ने यह आदेश दिया था क्या, ले जाओ चैतन्य महाप्रभु जी के उपदेश को। तो प्रयास करते गए इस विश्वास के साथ कि ये भविष्यवाणी जरूर सत्य बनेगी। तो ये भावना कैसे आती है हृदय में कि हमें भगवान कृष्ण के शरणागत हो जाना चाहिए? कैसे? कोई ड्रग स्टोर में जाकर आप दवाई मांगो, हमको ये दवाई दो कि हम भगवान कृष्ण के शरणागत हो जाएं, तो आपको दवाई नहीं मिलेगी, फिर दवाई काम मिलेगी? ये भी गोविंद दास जी आगे कहते हैं क्या, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, ये जो मानव जीवन है ये तो बहुत ही दुर्लभ है। आप सोचते होंगे कि ये तो हमने कई बार सुन लिया कि मानव जीवन बहुत ही दुर्लभ है। अफसोस की बात तो यह है कि ये सब सुना है लाखों बार पर हमारा मन इतना ढीठ है कि वो उसे समझ नहीं पाता। जैसे शराबी व्यक्ति रोज सुनता है पत्नी बच्चों के द्वारा शराब छोड़ दो कम कर दो, हाँ रोज वो सोचता है हाँ कम कर दूंगा पर फिर कम कर नहीं पाता। तुम्हारा मन भी उसी प्रकार का ढीठ है। रोज हम सुनते हैं मानव जीवन दुर्लभ है, किसी समय समाप्त हो सकता है। युधिष्ठिर महाराज जी ने पूछा यमराज से बताओ इस विश्व में क्या है सबसे बड़ा चमत्कार आश्चर्य की बात। तो क्या कहा युधिष्ठिर ने, हर क्षण हर पल में हम देख रहे हैं क्या एक दो नहीं लाखों व्यक्ति मृत्यु की गोद में जा रहे हैं, पर हम क्या सोचते हैं हमारा नंबर नहीं आएगा। आएगा भी तो हमारे से पूछ कर आएगा ना। हम लोगों में कई बार आप लोगों ने सुना होगा शमशान वैराग्य है, शमशान घाट में जाते हैं तो वैराग्य की भावना आती है क्या, संसार में सब झूठा है, सब दो दिन के साथी हैं, हमने भी ऐसे ही जाना है कल, हमें जरूर भजन करना चाहिए भगवान के शरणागत। हाँ पर शमशान घाट से थोड़ी देर बाद घर लौटते हो मीठे मीठे शब्दों के साथ, पत्नी बच्चे आते हैं आगे, फिर सब भूल जाते हो, फिर क्या नहीं नहीं, नहीं, नहीं। यही स्थिति हमारी रहेगी, हमें शमशान घाट नहीं जाना, नहीं हमारे घर वाले किसी ने जाना। तो शमशान वैराग्य सिर्फ एक दो घंटे के लिए या ज्यादा से ज्यादा एक दो दिन या 13 दिन के लिए चलता है, तो 13वें दिन के बाद सब सारा जीवन वैसे है वैसे ही लौट जाता है, ठीक है ना, अपने सपने देखा होगा। तो ये है हमारे मन की स्थिति। असली चीज कभी हम नकली मानते हैं और जो नकली चीज है उसको असली मानते हैं। असली चीज क्या है? भगवान के शरणागत होना, उसको तो हम समझते हैं ये नकली है। और नकली चीज क्या है? ये भौतिक जीवन, और उसको हम सोचते हैं ये असली है। तो ये है हमारी समस्या, हमारे में एक वो योग्यता नहीं है ये परखने लिए कि अस्थाई और स्थाई में क्या अंतर है, असत सत, असली और झूठ, सच और झूठ में क्या अंतर है, ये हमारे में योग्यता नहीं है। तो इसलिए गोविंद दास जी कहते हैं, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तुम साधुओं की संगत लो। साधु की संगत के द्वारा आपको क्या संदेश मिलेगा? साधु का क्या लक्षण है? साधु का ये लक्षण नहीं कि वो दलालगिरी करे, जैसे आप अखबारों में पढ़ते हो वो स्वामी, उसका नाम हम नहीं लेंगे, बड़ा जो बड़ा दलालगिरी करता है, ये करता है, वो करता है, हथियार बेचता है, वो बेचता है, वो नहीं है साधु का लक्षण। ना ही ये साधु का लक्षण है कि वो कुर्सी के पीछे बैठे इलेक्शन वगैरह में लड़े। साधु का ये लक्षण है कि वो भगवान के संदेश के अलावा और किसी विषय की चर्चा नहीं करता। जब वो आपसे मिलता है तो ये नहीं पूछता कितना कमा रहे हो, धंधा क्या है, कौन सा शेयर ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचा जा रहा है, नहीं। वो केवल यही सोचता है कि किस प्रकार से आपको भगवान कृष्ण का उपदेश पहुंचाया जाए। हाँ, कोई और इसके अलावा उसका जो अपना जीवन है वो शास्त्रों पर आधारित होता है। ये नहीं कि हम दूसरों को बोले हरि का नाम लो और हम नाम के लिए माला रखें केवल गले में, वो ऐसा काम नहीं चलेगा। शास्त्र में कहा जाता है आचार्य, चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि हर भक्त को अपने व्यवहार के द्वारा धर्म का उपदेश को प्रकट करना चाहिए, अपने व्यवहार के द्वारा। मतलब कि हम लोग का व्यवहार वैसा होना चाहिए कि लोग समझ जाए हाँ ये व्यक्ति दुनियादारी दुनिया भौतिकवादियों से जुदा है। तो साधु का लक्षण क्या है? कृष्णा की चर्चा करना। हमारे गुरु महाराज जी को मिलने धनी व्यक्ति आते थे, गरीब व्यक्ति आते थे, उन्होंने कभी ये नहीं देखा कौन अमीर है कौन गरीब, सबको यही कहा हरि का नाम लो, कृष्णा के शरणागत हो जाओ और भगवद गीता को पढ़ो। तो साधु संगत बहुत अवश्य है। आप सबका अभ्यास होगा कि जब आप लोग इन सत्संग प्रोग्राम्स में आते हो, आप में जब प्रेरणा बढ़ जाती है, ठीक है ना, और ये जरा असर एक दो दिन तक रहता है, फिर जरा फिर से आस्ते आस्ते कम हो जाता है, सच बात है। तो इसके लिए फिर आप लोगों को जाना चाहिए मंदिर या उपदेश सुनने के लिए। जैसे ये जो मंदिर है, इन मंदिरों का क्या उद्देश्य है? एक तो उद्देश्य है ठाकुर जी की सेवा करना, पूजा करना। ठाकुर जी की पूजा हम क्यों करते हैं? क्योंकि ठाकुर जी हमें मौका दे रहे हैं उनकी सेवा में जुड़ने के लिए। फिर जब हम ठाकुर जी के सामने आकर प्रणाम करते हैं, झुकते हैं, तो झुकने से ही आप आध्यात्मिक परिवर्तन करते हो। अगर आज जिंदगी में कुछ मत करो, रोज आके भगवान के सामने प्रणाम करो, झुको, उसी में आपका आध्यात्मिक जीवन बन जाएगा, केवल भगवान के सामने जाकर प्रणाम करने के लिए। और जब आप भगवान के सामने जाते हो, भगवान का दर्शन प्राप्त करते हो, तो फिर भगवान का सुंदर विग्रह देखकर आपका अशुद्ध हृदय जो है वो शुद्ध बन जाता है। तो इसके लिए कहा गया है कि जो मंदिर है वहां वैसा वातावरण होना चाहिए कि वहां पहुंचते ही हमें ये याद आए कि जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए। तो साधु संगत बहुत अवश्य है। कई बार हम साधुओं से डर जाते हैं, असली साधुओं से। हम सोचते हैं कि जाएंगे स्वामी जी वही कहेंगे ये बदमाशी छोड़ो, ये गंदी चीज छोड़ो, ये छोड़ो वो छोड़ो, हम तो ये छोड़ने को तैयार नहीं है। तो हम साधुओं से भागते हैं। आजकल बहुत से अमेरिकन बिजनेस कंसल्टेंट्स आते हैं इंडिया, हाँ, और वो लोग 10-10,000 रुपए लगाते हैं एक लेक्चर के लिए, शायद आप लोग को पता होगा। बड़े बड़े आते हैं, किसी ने उनका अमेरिका में नाम नहीं सुना पर इंडिया में देवता बन जाते हैं। तो यहाँ आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज अपने आदमियों को भेजती हैं 2 घंटे का लेक्चर सुनने के लिए। एक हमारे बहुत बड़े व्यापारी सदस्य हैं दिल्ली में, तो कह रहे थे वो ऐसे एक व्यक्ति को मिलने गए, 10,000 रुपये फीस थी आधे घंटे की मीटिंग के लिए, और कोई नई बात नहीं सुनी उनसे, जो आता था वही उनसे सुना। पर सब जाते हैं, बड़े बड़ी कंपनी जैसे ताजमहल होटल वगैरह में सेमिनार करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी अपने आदमियों को भेजती है। तो हम बड़े उत्साह के साथ जाते हैं कुछ सीखने के लिए कि हम हमारे काम के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें। तो उसी प्रकार अगर आप आपका भाग्य यह हो कि आपको शुद्ध संतों की संगत मिल जाए, तो आपके हृदय में ये विचार निश्चित रूप से स्थापित हो सकता है। तो आगे गोविंद दास जी कहते हैं, बाजाओ हरि पादा, किसी न किसी रूप से तुम हरि के शरण लो, हरि हरि के शरणागत हो जाओ। तो कैसे हो हम शरणागत? एक तो माध्यम है साधु संगत के द्वारा, और गोविंद दास जी कहते हैं जिस प्रकार एक कमल के पत्ते के ऊपर एक पानी का बूंद हो, तो पानी का बूंद किसी समय भी वो कमल के पत्ते से नीचे गिर सकता है, ठीक है ना? आप यकीन से तो ये नहीं कह सकते दिस वाटर विल नॉट फॉल फॉर 2 आवर्स, किसी समय भी नीचे आ सकता है पानी। उसी प्रकार गोविंद दास जी कहते हैं ये जीवन किसी भी समय समाप्त हो सकता है। तो वो समझाते हैं हमें हरि के शरणागत हो जाना चाहिए। कैसे हो? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंद्यम दस्यम सख्यम आत्मनिवेदन, ये है नवदा भक्ति, जिसका वर्णन सबसे पहले प्रहलाद महाराज जी ने किया था। प्रहलाद महाराज जी से तो आप सबका परिचय है। प्रहलाद महाराज जी उनको शास्त्रों में महाजन माना जाता है। वैसे तो आजकल भारत में महाजन एक जात बन गई है, हाँ आप में भी शायद कोई महाजन हो सकता है, हाँ पर महाजन का संस्कृत में अर्थ है जो कि धर्म का अधिकारी हो, जिसके द्वारा हमें धार्मिक शिक्षा प्राप्त होती है। तो हमारे वैदिक शास्त्र के अनुसार 12 महाजनों का वर्णन है, हाँ कुमार, तो 12 महाजनों में एक महाजन है जिनका नाम है प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज जी ने ये दिव्य ज्ञान को अनुकूल किया था नारद मुनि जी के द्वारा, जबकि वो अपनी माता के घर में थे। तो प्रहलाद महाराज के पिता, उनका क्या नाम था? हाँ हिरण्यकश्यप, उनसे तो आपका परिचय है। हिरण्यकश्यप तो केवल धन में और स्त्रियों में रुचि लेते थे, और उनको दुख क्या था? किस विषय का दुख था उनको? उनको दुख था उनके बेटे का कि बेटा उनकी पूजा नहीं कर रहा, उनके विचारों को स्वीकार नहीं कर रहा, वे बेटा विष्णु भक्ति में पागल हो गया है, ये था। तो एक दिन जब बेटा लौटा स्कूल से, तो पिता ने बेटे को गोद में बिठाया और पूछा, बेटा ये बताओ आज तुम स्कूल में क्या सीखे हो? हाँ तो बाप ने उम्मीद की थी कि बेटा कहेगा मेरे अध्यापक ने ये सिखाया कि आप हो सबसे परम, क्योंकि दिन रात प्रहलाद महाराज के पिता, उनके जो अध्यापक थे शुक्राचार्य के बेटे 2, उनको यही कहते थे इनको बताओ कि विष्णु को भूल जाएं, मेरी पूजा करें, मेरे से ऊंचा इस स्थिति में कोई नहीं है। तो यही उम्मीद की थी, पर विष्णु ने क्या, प्रहलाद महाराज ने क्या कहा? आज मैंने स्कूल में ये सीखा है क्या, नवदा भक्ति। क्या है नवदा भक्ति? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, श्रवणम कीर्तनम भगवान का नाम लेना और भगवान का नाम सुनना। न्यूयॉर्क में एक बगीचा है टॉमकिंस स्क्वायर पार्क, जैसे आपके जू बॉम्बे में भी बगीचे हैं, जू पार्क वगैरह। तो प्रभुपाद जी जब इंडिया से गए अमेरिका तो टॉमकिंस स्क्वायर पार्क में जाकर भारत से एक ढोलकी ले गए थे, मृदंगा मिली ढोलकी, तो ढोलकी को बजाकर उन्होंने कीर्तन करना शुरू कर दिया। और सब जगह लोगों को ये कीर्तन में आनंद आता है। लोग क्यों आते हैं? कीर्तन के कारण ही आते हैं। अभी 3-4 साल पहले एक बैंड हम लाए थे मॉस्को में, गुरंगा भजन बैंड। तो गुरंगा भजन बैंड के कीर्तन में 40,000 लोग आए थे पैसे देकर, टिकट खरीद कर कीर्तन सुनने के लिए, और कीर्तन में भाग्य ले निकले। जैसे आप लोग NSAI के प्रोग्राम में आए थे उसी प्रकार 40,000 लोग आए थे पैसे देकर हरि नाम का कीर्तन में भाग्य लेने के लिए। तो मतलब ये है, ये कीर्तन जो है ये बहुत प्रभावशाली जादू है हृदय की मैल को दूर करने के लिए। भगवान के नाम में और साधारण नामों में एक महान अंतर है। नाम चिंतामणि कृष्ण चेतन रास विग्रह पूर्णो शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्ना त्वम नाम नामिनाह। कहा गया है नाम चिंतामणि कृष्ण, ये जो कृष्णा का नाम है ये एक परस पत्थर चिंतामणि के समान है। परस पत्थर हम किसे कहते हैं? जो कि हर चीज को छूने पर सोना बना देता है। तो भगवान का जो नाम है ये है असली परस पत्थर, ये है असली चिंतामणि। आज तो हम हीरे मोती खरीदते हैं कोई लाखों रुपए देकर, पर वो असली चिंतामणि नहीं है, वो असली परस पत्थर नहीं है। तो शास्त्र में भगवान के नाम की तुलना की गई है इस चिंतामणि के साथ। और ये हर रूप से हमें पूरा कर सकता है, संतुष्टता दे सकता है, और यही एक माध्यम है किसका? असली मुक्ति दिलाने का। तो ये हरि नाम भगवान भगवद गीता में कहते हैं यज्ञों में मैं क्या हूं? जप हूं। अनेक प्रकार के आप यज्ञ कर सकते हो, पर कलयुग में यज्ञों में क्या हूं? मैं जप हूं। जब आप जप माला करते हो वो है असली यज्ञ। तो प्रहलाद महाराज जी ने कहा और गोविंद दास ये कहने शरणम कीर्तनम। अभी आप भगवान का नाम लोगे और भगवान का नाम सुनोगे फिर तीसरी स्थिति प्राप्त होगी। क्या है वो? विष्णु स्मरणम। विष्णु का स्मरण करो भाई। और हम इस मन के द्वारा क्या स्मरण करते हैं आज? यही बच्चे पत्नी क्या है क्या नहीं है क्या होना चाहिए, ठीक है ना? चौधरी सच बात यह है ना, भगवान का नाम स्मरण 24 घंटे में 2 मिनट भी नहीं करते, बाकी समय यही सोचते हैं क्या हो गया क्या होना चाहिए, कितना कमा लिया कितना कमाना चाहिए। तो इस प्रकार मन जो है हमारा शत्रु रहता है। आप सारे विश्व को जीत लो पर अगर आपने अपने मन को नहीं जीता तो आपने कुछ भी नहीं जीता। इसके लिए भगवद गीता में भगवान कहते हैं मन की तपस्या क्या है। जैसे हम आपको कहते हैं 4 प्रकार के नियमों का पालन करो, हाँ मांस ना मछली नहीं खाओ, शराब नहीं पियो, ये नहीं करो वो नहीं करो। तो मन को जीतने के लिए क्या करना चाहिए? मन का एक तपस्या क्या है? एक है सादा जीवन, सिंप्लिसिटी। सादा जीवन बिताओ। सादा जीवन में विचार बिताओगे तो विचार ऊंचे रख सकोगे। ऊंचा जीवन बिताओगे तो विचार बिल्कुल सादे होंगे। आध्यात्मिकवादी व्यक्तियों का क्या लक्षण है, क्या नियम है? सादा जीवन और ऊंचा विचार। और जो हमारे भौतिकवादी मित्र हैं उनका क्या लक्षण है? ऊंचा जीवन सादा विचार। रहो राजा जैसे, जैसे आज हमें कोई कह रहा था अभी आप 10,000 में मोटर खरीद सकते हो, फाइनेंसिंग मिल जाती है वगैरह। तो ये अभी भारत में भी आ गई है, जैसे चाहे आपके पास धन नहीं हो, कुछ नहीं हो, उधार लो, ये लो ये लो, पर दुनिया को दिखाने के लिए है ना। ऐसे लोग जब शादी करते हैं, आपके विषय में नहीं, ऐसे ऐसे बात कर रहा हूं, लोग जब शादी वगैरह करते हैं तो पहले क्या सोचते हैं, सबसे बड़ी शादी किसकी हुई थी पिछले एक साल में, है ना। तो अभी हमने शादी करनी है उससे आगे, ठीक है ना। उसने अगर 50 लाख खर्चा है तो हमने 70 लाख जरूर खर्च कि सब देखेंगे कि हमारी शादी नंबर एक थी, ठीक है ना। तो ये है भौतिक जीवन, हर व्यक्ति यही चाहता है कि दूसरे से आगे बढ़े, बस ये नहीं कि भगवत प्राप्ति, दूसरे से आगे बढ़ना है बस। तो इस प्रकार जो है ये जीवन प्रकार हो जाता है। तो सादा जीवन ऊंचा विचार, ऊंचा जीवन सादा विचार। सादा विचार क्या मतलब? सादा विचार का मतलब है सोचना पशुओं के जैसा। पशु क्या सोच पाते हैं? आहार निद्रा भैया मैं सुनिया चा, खाने को स्थान कहाँ है, सोने को स्थान कहाँ है, भोग विलास के लिए साथी कौन है, और हम अपने अपने आप को बचाएंगे कैसे। तो जब व्यक्ति इन चार क्षेत्रों की केवल चिंता करे तो कहा गया है ये जीवन पशु के समान है और ये जीवन है सादे विचारों का। और जब आप ये सोचते हो कि मानव जीवन तो बहुत ही दुर्लभ है, मानव जीवन का सुख का साधन भगवान के जो भगवान की दया से प्राप्त होता है उसी को अपना कोटा मानकर स्वीकार करो और आध्यात्मिक जीवन के लिए समय को लगा। पर हम कोई संतुष्ट होता ही नहीं। प्रहलाद महाराज जी भगवतम में कहते हैं, हे मूर्ख व्यक्ति, जो तुम्हारे सुख और दुख का कोटा है उसे एक बूंद ज्यादा नहीं मिलेगा। प्रहलाद महाराज जी ने भगवतम में कहा गया कहा ये, हे मूर्ख व्यक्ति तुम इतना परिश्रम क्यों करते हो, जो तुम्हारा कोटा है उसे एक बूंद ज्यादा नहीं मिलेगा, चाहे तुम कितना भी परिश्रम करो। जैसे कि दुख आता है बिना मांगे, प्रहलाद महाराज जी का कहना है वैसे ही सुख भी आएगा बिना मांगे। दुख की कोई भीख तो भी मांगता, आप कभी पूजा करते हो कि मुझे रोग पीड़ा दो, पर रोग पीड़ा आती है, हाँ? आप दुख की कोई भीख नहीं मांगता, पर बिना मांगे दुख आता है। बिना मांगे आपको कष्टों का सामना करना पड़ता है, बिना मांगे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसी प्रकार प्रहलाद महाराज जी का कहना है कि सुख भी आएगा बिना मांगे, पर जितना आपका कोटा है उससे एक बूंद ज्यादा नहीं। तो इसके लिए प्रहलाद महाराज ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा परिश्रम करोगे, बहुत ज्यादा चापलूसी करोगे तो सुख का कोटा बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। आप कई बार देखते हो एक आदमी जिस चीज पर हाथ लगाता है वो सोना बन जाता है ना, दूसरा व्यक्ति हाथ लगाते रहता है वो मिट्टी रहती है, ठीक है ना। तो इन सब के पीछे कोई सिद्धांत है। एक व्यक्ति एक्सीडेंट होता है, घायल हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, दूसरा व्यक्ति उसी एक्सीडेंट में बच जाता है। तो इन सब चीजों के पीछे कुछ हाथ है। एक व्यक्ति धनी जन्म लेता है बड़े खूबसूरत शरीर के साथ, धनी बड़ी तेज बुद्धि के साथ, दूसरा व्यक्ति वहां का वहां ही है। तो इन सब के पीछे सिद्धांत है। सिद्धांत क्या है? काम मना देवा नहीं प्रेना जानते हो देव पपते, कर्मों के आधार पर ये सब निर्णय किया जा रहा है। तो भगवद गीता में कहा गया है मन की शांति के लिए एक तो तुम सारा जीवन बिताओ, दूसरा संतुष्ट हो जो भी तुम्हें प्राप्त होता है। जैसे कि आपको शायद एक कथा मैंने सुनाई थी, हमारे गुरुजी सुनाते थे, एक कृष्णनगर बंगाल में एक संत था जो गरीब था, जिसके पास रहने के लिए
कोई कमरा भी नहीं था। वृक्ष के नीचे उसका घर था, उसकी पत्नी और एक दो शिष्य थे उसके, जो शिष्य भीख मांग कर लाते थे अन्न चावल वगैरह, उसकी पत्नी उबाल कर उसको खिला देती थी। तो दूर दूर से लोग आते थे संत का दर्शन प्राप्त करने के लिए। तो राजा तक खबर पहुंच गई कि उसके राज्य में एक बड़ा प्रभावशाली संत है जिसके दर्शन प्राप्त करने के लिए तो दूर दूर से लोग आते हैं, पर उसके पास रहने का ठिकाना भी नहीं है। तो राजा में निम्रता थी, वो खुद पहुंचा उस संत के घर में और संत के पास पहुंचकर कहने लगा, मैंने सुना है कि आप बहुत दुखी हो। तो संत ने कहा, अच्छा, आपके पास रहने का ठिकाना नहीं है, ना ही खाने की सुविधा है। तो संत ने कहा, आपको किसने ये गलत सूचना दे दी, मैं तो बिल्कुल संतुष्ट हूं, रहने के लिए ये पेड़ के नीचे मैं रहता हूं और खाने के लिए मेरे शिष्य भीख मांगकर लाते हैं गेहूं और चावल को, जो मेरी पत्नी उबालकर मुझे खिला देती है। तो ये है संतुष्ट व्यक्ति। तो जो व्यक्ति किसी न किसी रूप से भगवान के शरणागत हो जाए, जो भगवान के दिव्य नामों को अपना ले, तो वो व्यक्ति संतुष्ट रहता है। तो भगवद गीता में कहा गया है, सादा जीवन बिताओ और संतुष्ट रहो। फिर आगे ग्रेविटी, गंभीरता। गंभीरता का क्या मतलब, सदा ये सोचना कि जीवन में ज्यादा समय नहीं बचा, ज्यादा समय नहीं बचा, बहुत थोड़ा समय बचा है, अंत किसी समय भी आ सकता है। हजारों साल पूर्व एक युद्ध हो रहा था देवताओं में और असुरों में। तो एक राजा थे जिनका नाम था महाराज खटवंगा। तो महाराज खटवंगा ने देवताओं का सहयोग दिया असुरों को हराने में, जिसके कारण देवताओं की जीत हुई और देवता जो थे बहुत ही प्रसन्न हुए। तो फिर देवताओं ने महाराज को कहा, आपके कारण हमारी विजय प्राप्त हुई है, बोलिए हम आपके लिए इसके बदले में क्या कर सकते हैं। तो राजा बुद्धिमान था, राजा ने कहा, स्वर्ग लोक में यहां से ज्यादा लाखों गुना ज्यादा सुविधा है भौतिक सुखी। जैसे आप लोग अमेरिका जब जाते हो देखते हो कि वहां का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहां से ऊंचा है, और बॉम्बे में भी अलग अलग नगरी में अलग अलग स्टैंडर्ड है। तो इसी प्रकार स्वर्ग लोक का जो भौतिक सुख है, यहां के भौतिक सुख से बहुत लाखों गुना ज्यादा है। तो राजा ने कहा देवताओं से, आप मुझे ये बताओ कि मेरे जीवन में और कितना समय बीत गया, बच गया है रहने के लिए। तो देवताओं के पास तो ये योग्यता थी, कई बार आप लोग जोशियों के पास जाते हो पता करने, हाँ कब तक हम जिएंगे। तो जोशी जी भी तुक्का मारते हैं, आप इसको विश्वास को कह दे कि 80-90 साल तक जियोगे तो आप खुश हो जाते हो, ज्यादा दक्षिण दे देते हो जोशी को। वो कोई कह दे कि कम, तो हम कहने दे नहीं, ये गलत है, ये जानता नहीं है जोशी जी। उसकी जो जोशी की तलाश में रहते जो कहे कि 80-90 साल जियोगे, है ना। तो देवताओं के पास ही योग्यता थी, उन्होंने कहा कि आपके जीवन में भी एक क्षण और बच गया है बस। तो राजा ने क्या किया, तुरंत ही उन्हें कहा कि मुझे भौतिक जगत में लौटने दो, जहां कि मैं भगवान का स्मरण कर सकूं। तो भगवतम में इस घटना का उदाहरण दिया जाता है ये समझाने के लिए कि हम सबको यही सोचना चाहिए कि ये जीवन किसी समय भी समाप्त हो सकता है। तो इस प्रकार से भगवद गीता में कहा गया है, हमें हमेशा गंभीर रहना चाहिए। गंभीर किस विषय के लिए, कि हमें जीवन के लक्ष्य को जरूर प्राप्त करना है, बिल्कुल निश्चित रूप से
इस उद्देश्य को स्वीकार करना चाहिए। ये नहीं कि जैसे थोड़ी कमजोरी देखे या कोई कुछ और विचार आए तो हम इसको तैयार करें। तो अगर हम इस प्रकार से मन को स्थिर बनाने का प्रयास करें, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि मन के द्वारा हमें मन को बंदूर बनाना है, इस वक्त ये मन हमारा शत्रु है। जब मन आपको भगवान के आदेश को स्वीकार करने से रोकता है तो ये मन आपका शत्रु है। जब यही मन आपको भगवान और गुरु की शिक्षा को स्वीकार करने में, पालन करने में सहयोग देता है, तो उस स्थिति में केवल ये मन आपका बंधु है। तो हमें आध्यात्मिक वाणी को, मन को बंधु बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप मन को बंधु नहीं बना पाओगे तो आध्यात्मिक जीवन में आप परिवर्तन नहीं कर पाओगे। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, हम आपको नवदा भक्ति का वर्णन सुना रहे थे। तो विष्णु स्मरणम मतलब भगवान का स्मरण करना, ये संभव होगा जब आप प्रयास करोगे अपने मन को जीतने के लिए। तो गोविंद दास जी का जो ये आदेश है, वही आदेश हम आपके सामने रख रहे हैं आज। और आप सबसे यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आप किसी न किसी रूप से ये हरि नाम को अपनाओ। ठाकुर भक्तिविनोद जी का हमने वर्णन किया था, तो ठाकुर भक्तिविनोद जी एक प्रार्थना में कहते हैं, गृह ठाको वाने ठाको सदा हरि भोले ठाको। तुम गृहस्था हो या सन्यासी हो या ब्रह्मचारी हो, कुछ चिंता नहीं है, किसी न किसी रूप से हरि नाम को अपनाओ। तुम सदा हरि भोले ठाको, सदा हरि का नाम लो। हम ये नहीं कहते कि आप गृहस्था हो तो गृहस्था आश्रम छोड़ो, नहीं, जहाँ हो वहीं रहो। केवल अपनी चेतना को बदलो, केवल अपने हृदय को साफ करो, और वो क्या है, किसी न किसी रूप से भगवान के शरणागत हो जाओ। और भगवान के शरणागत होने का सबसे सरल साधन और माध्यम क्या है, ये हरि नाम को अपना कर। तो आप सबसे यही निवेदन है कि आप भी भगवान कृष्ण के साथ जुड़िए। वैसे तो आप सब जुड़ चुके हो, इसीलिए आप इधर आए हो, पर और गहराई से जुड़िए। जितना प्रयास करोगे उतने ही ज्यादा भगवान के शरणागत हो जाओगे, और जितने ज्यादा शरणागत होगे उतना ही, उतनी मात्रा में आपको असली सुख की प्राप्ति होगी। ये असली सुख, ये जो सुख जिसके पीछे आज सारा विश्व भूखा है, वो नकली सुख है। आप लोग जो बुद्धिमान हो, असली करोड़पति लोग व्यक्ति हो, और आप लोगों में ये भावना है असली सुख की प्राप्ति के लिए, और असली सुख की प्राप्ति होती है साधु की संगत के द्वारा, भगवान की शिक्षा के द्वारा, और इसका पालन करके। और आप पालन कीजिएगा और इस प्रकार अपने जीवन को सुखी बनाइए और सफल बनाइए। हरे कृष्ण।